समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। आज के परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। To begin with, let's remember our fallen heroes of the gruesome, ghastly attacks in the city of Mumbai in the year 2008. Today is the day of the infamous 26/11 terrorist attack in the city, when many brave hearts put their lives at risk to save others. Today we remember the heroes who were killed in the line of duty. We remember the bravery, sacrifice and martyrdom of the martyrs with great pride. Pray for the eternal souls of the martyrs to rest in peace. Recognize the martyrs' courage and sacrifice as a beacon of inspiration. With the feeling of pride and inspiration within us, let's begin our parikrama today with all that's making news at this time. What do you say, Mukesh?
Bilkul.
Nation celebrates Constitution Day to mark 75 years of its adoption. President Draupadi Murmu, in her address to both houses of parliament, urges citizens to imbibe its ideals into behavior and work towards achieving goal of a developed India.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को देश की हजारों वर्षों की परंपरा का मार्गदर्शक और आधुनिक अभिव्यक्ति बताया।
गवर्नमेंट अप्रूव्स ओवर 1000 करोड़ रुपीस टू 15 स्टेट्स फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स।
देश आज 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों को याद कर रहा है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत सभी तरह के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध।
Depression lying over southwest Bay of Bengal likely to intensify into a deep depression in next 12 hours, bringing heavy rains in coastal Tamil Nadu. And Mukesh, it's now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about Samvidhan Divas. We have gathered to celebrate a monumental occasion in our nation's history. Constitution Day or Samvidhan Divas. This year we mark the 75th anniversary of the adoption of the Indian Constitution, a landmark achievement that has guided our nation since 1949, shaping the world's largest and most dynamic democracy. On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution, laying the foundation for a sovereign democratic republic. Though it came into effect on the 26th of January 1950, Republic Day, today is a reminder of how far we have come and how the ideals of justice, liberty, equality and fraternity continue to steer our nation. India's constitution is not just a document, it's a living, progressive guide to building an inclusive, vibrant society. Over the years, it has empowered us to stand together, united in our diversity and committed to the principles of social justice and equality.
बिल्कुल, आज हम अपने संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरी संविधान सभा के दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। संविधान भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का आधार रहा है। इस पवित्र दस्तावेज के माध्यम से हम वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत की दिशा में प्रयास करना जारी रखेंगे। दरअसल भारतीय संविधान हमारी परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर आर्थिक विकास तक, डिजिटल उन्नति से लेकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने, ऐतिहासिक कानूनों को पारित करने, वंचित गरीबों को अधिकार देना, राष्ट्रीय भावना को बनाए रखना, विकास के युग की शुरुआत करने तक हमारे संविधान ने प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है।
And as we celebrate this historic milestone, let us remember the Constitution's core values. It is a testament to the sacrifices, ingenuity and strength of the people of India. It is the guiding light that ensures our democracy continues to thrive. India's Constitution is a beacon of hope, and on this day, we come together to celebrate our achievements. Addressing a grand event organized at the Central Hall of Samvidhan Sadan in New Delhi to mark the Constitution Day today, President Murmu described the Indian Constitution as a living and progressive document through which the country is achieving the goals of social justice and inclusive development. She said, as per the Constitution, it is the duty of the executive, the legislative and the judiciary to work together to make the lives of common people comfortable. She also added that the ideals mentioned in the preamble, justice, liberty, equality and fraternity, have been instrumental in shaping a society where citizens have the freedom to dream and thrive.
बिल्कुल, भारतीय संविधान केवल पुस्तक नहीं है, ये वर्षों के त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसने भारत की विविधता को एकता में बदला है, ये सामाजिक और आर्थिक सुधारों की प्रेरक शक्ति बनी है जिससे हर नागरिक को लाभ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी देशवासियों को संविधान दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान देश की हजारों वर्षों की महान परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है।
The Indian Constitution is a living testament to the resilience and spirit of our democracy. It's more than just a law. It's a promise to every citizen, a promise of a just and equitable society. And today, as part of the celebrations, a commemorative coin and stamp have been released to mark the 75th anniversary of the adoption of our Constitution. The President also unveiled books that take us through the making of the Constitution and its journey over the decades. Making of the Constitution of India a glimpse and making of the Constitution of India and its glorious journey. These books offer a deep dive into the history and significance of the document that has shaped our nation.
जी हाँ, इस संविधान दिवस पर हमें अपने लोकतंत्र की ताकत, हमारे संविधान की शक्ति और इसके मूल्यों को बनाए रखने में हम में से प्रत्येक के साझा दायित्व की याद दिलाई जाती है। जैसे जैसे हम प्रगति और एकता के लिए प्रयास करना जारी रखते हैं, हमें उन सिद्धांतों पर विचार करने का समय मिलता है जो हमारे देश का मार्गदर्शन करते हैं, और हम नागरिक के रूप में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं।
Of course, a constitution is important for a country because it establishes the framework for governance, protects citizens' rights and ensures accountability. It establishes the framework for governance and it, as I said, it shows accountability also. Let's celebrate the power of the Indian Constitution and the vision of a united, progressive and inclusive India. Let us pledge today on Constitution Day to honor the ideals that continue to shape our present and our future. From all of us here, wishing you a very happy and thoughtful Samvidhan Divas. Jai Hind.
जी बिल्कुल, और इस विशेष दिन पर आइए हम उन लोगों के योगदान का स्मरण करें जिन्हें इस संविधान दिवस पर हमें अपने लोकतंत्र की ताकत, हमारी संविधान की शक्ति और इनके मूल्यों को बनाए रखने में प्रत्येक में साझा दायित्व का स्मरण हुआ था।
राइट। And now it's time for our correspondent's corner. And to begin with, we go take you all to Bengaluru. The historic groundnut festival, well known as the Kadalekai Parishe, started in Bengaluru yesterday. The five-day festival at the Bull Temple and the Dorda Ganesh Shrine in Basavanagudi is attracting thousands of visitors there.
The Bull Temple and Dorda Ganesha Shrine in Basavanagudi is bustling with disciples, consumers and tourists as varieties of groundnuts and their products are piled up across the road. The historic groundnut fair, or Kadalekai Parshe, began yesterday. Earlier, the farmers who cultivated groundnut brought their first harvest to the Bull Temple as an offering and thanking the Nandi for the good harvest. Today, the tradition is continued by the traders and street hawkers. Deputy Chief Minister in Karnataka, D.K. Shukumar, who inaugurated the fair yesterday, has promised to develop Basavanagudi as a heritage corridor under the Brand Bengaluru initiative. He also announced tax exemption to the traders to sell their produce in the fair. Due to surging crowd, over 200 police personnel are keeping watch over miscreants and also to maintain law and order. There is also CCTV surveillance put in place. The visitors also visit Bugle Rock Park and Narasimha Swami Park, which is very well kept for the special occasion. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
और श्रोताओं को कर्नाटक से अगली चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और हिमाचल को हरित राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका प्रमुख रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 300 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 62 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र में 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और 15 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। प्रदेश सरकार की कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पहल से राज्य के राजस्व व संसाधनों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं में संसाधनों के सदुपयोग के साथ साथ उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुझाव देने का आग्रह भी किया है। निश्चित तौर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
And now, Mukesh, all the more convenient reason to go and visit Jammu and Kashmir. In a move aimed at improving connectivity with the Kashmir region, the New Delhi-Srinagar Vande Bharat Express is all set to start in January 2025. The semi-high-speed train will depart from New Delhi at 7 p.m. and reach Srinagar at 8 a.m. the next day and will cover a distance of 800 kilometers in less than 13 hours. A trial train is currently being run between Sangaldan and Riyasi railway stations. This section also has the highest bridge on the Chenab River, from where a trial run of an electronic train has also been conducted.
The Director of Railway Safety inspected the railway track between Sangaldan and Riyasi for the second time recently and reviewed the track and work from Riyasi to Katra. The work is currently underway on tunnel T33 and will be completed in about a month. Besides, the work will be completed on all four railway stations between Riyasi and Katra by December 2024, after which the Director of Railway Safety will observe a trial train run for 15 days till January 5. The train between Sangaldan and Banihal is running smoothly, and every effort is being made to complete the 17-kilometer long railway line between Riyasi and Katra and start rail service from Udhampur to Baramulla. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from RNU Akashwani Jammu.
And we all know that the International Cooperative Alliance, the ICA Global Cooperative Conference, is underway in New Delhi these days. The conference was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi yesterday at Bharat Mandapam in the national capital. The theme of the conference is Cooperatives Build Prosperity for All. Our correspondent reports that the conference will witness cooperatives from around the world for a series of events and discussions. We have more on this from our correspondent.
At the International Film Festival of India in Goa today, cinephiles are treated to a diverse array of films and activities. Around 73 films across genres have been showcased within the categories of feature and non-feature films. Talking to Akashwani, two-time National Award-winning filmmaker Aditya Swas Jambale, whose blockbuster film Article 370 is competing for the prestigious Golden Peacock Award under the Indian Panorama section, said that the festival has been very enriching for him and he is hopeful of winning the award. He also shared an advice for young and aspiring filmmakers on how to make it big in the film industry.
Just keep working, keep hustling. You have the phone, try shoot, write something, dribble whatever you feel. Speak from the heart, don't follow the rules.
Meanwhile, the non-feature film category of Indian Panorama showcased Pillars of Progress, the epic story of Delhi Metro, a documentary. And this year, there's also a special section, Accessible India, Accessible Films. This unique segment featured Indian and international films such as India Votes, Stride and Beyond the Code, The Indian Wheelchair Basketball Journey. These movie screenings are equipped with audio descriptions and Indian Sign Language, ensuring inclusivity for visually and hearing impaired audience. For Parikrama with Durgesh Bhadauria, this is Omvesh Upadhyay, Goa.
And yes, the 43rd India International Trade Fair, IITTF, is underway at Bharat Mandapam in New Delhi these days. The 14-day fair, themed Viksit Bharat at 2047, showcases India's economic and cultural richness on a global scale. Our correspondent reports that it is one of the country's biggest trade events, attracting a large number of visitors.
India International Trade Fair is receiving a huge response from the public. On the last Sunday, more than 150,000 visitors visited the fair. A large number of crowd can be seen purchasing from many stalls, including kitchenware, ceramics, dry fruits, bags, purses, toys, footwear, pickles, spices, oil, fans, furniture items, clothing and decorative pieces. Pavilions and stalls of various government ministries and departments are also attracting the eyes of the visitors. Tomorrow is the last day of IITF 2024. For Parikarma, with Saklane's report, Akshit Vaidyan, Akashvani News, Delhi.
And it's now time to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We, the people of India.
Today is Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, which is celebrated in our country on the 26th of November every year to commemorate the adoption of the Constitution of India on this day in 1949.
The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th of November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote constitution values among citizens.
The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly set up under the Cabinet Mission Plan of 1946. The Assembly held its first meeting on the 9th of December 1946 and elected Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member of the Assembly, as the Provisional President.
The Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as its permanent chairman. Highlighting the role of the Constituent Assembly in an infant nation, Dr. Rajendra Prasad said,
"Main ye bhi manta hu ki is Constituent Assembly ko pura akhtiyar, mukammal akhtiyar is baat ka hai ki wo apni karwai jis tarah se chahe kare, iske andar wo jo kuch karna chahe kare aur isme kisi bhi bahar ki taqat ko akhtiyar nahi hai ki iski karwaiyon mein wo kuch bhi hastakshep या दस्तंदाजी कर सके।
The Constitution of India is the longest written constitution in the world.
People of India are the ultimate custodians of the Constitution.
और परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है व्यापार जगत की हलचल जानने का।
Yes, Mukesh, domestic benchmark equity indices today ended with marginal losses, snapping its two-day winning streak. The 30-share BSE Sensex dropped 106 points or 0.13% to close at 80,004, while the NSE Nifty 50 slipped 27 points or 0.11% to settle at 24,194. In the global crude market, Brent crude was trading 0.77% up at $73.57 per barrel. If we talk about the 24-carat gold, it was trading down at 75,410 rupees per 10 grams, while silver 9995 is trading up at 88,210 per kilogram when reports last came in. And what about the sports news?
बिल्कुल, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज मुंबई सिटी एफसी का सामना पंजाब एफसी से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल ओडिशा एफसी ने हैदराबाद एफसी पर 6-0 से शानदार जीत दर्ज की। और अब याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो अनुजा, सबसे पहले इस क्रम में याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा को। वे समाज की हकीकत से रूबरू कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकारों में शामिल थे। राम शरण शर्मा भारतीय इतिहास को वंशवादी कथाओं से मुक्त कर सामाजिक और आर्थिक इतिहास लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत करने वालों में गिने जाते थे।
ऑफ कोर्स ही वाज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर, अ क्वालिटी दैट इज वेल रिप्रेजेंटेड इन द वे ही शेप्ड द एकेडमिक प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एज इट्स फाउंडर चेयरमैन। एंड द नेक्स्ट पर्सनैलिटी वी पे ट्रिब्यूट टू इज डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बट येस, लेट मी रिमाइंड यू दैट टूडे we are also celebrating National Milk Day, Mukesh. The day marks the 103rd birth anniversary of Dr. Varghese Kurien, who is also known as the father of the White Revolution in India.
बिल्कुल भारत में, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भारत में दुग्ध क्रांति जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है उसके वो जनक थे और भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन को देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का भी श्रेय जाता है।
Right, Dr. V. Kurien's lifelong purpose of work can be summed up in one word, empowerment. Empowerment of small and marginal farmers and landless laborers. Apart from the milk revolution that he spearheaded so successfully, his work has greatly impacted on the lives of millions of cooperative dairy farmers socially, politically, and most importantly, economically. And the milk revolution is, in fact, a byproduct of the empowerment he brought about through the Amul model, also known as the Anand Pattern Dairy Cooperatives.
जी हाँ, अमूल की सफलता से अभिभूत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का गठन किया था, जिससे पूरे देश में अमूल मॉडल को समझा और अपनाया गया। कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 वर्ष तक इसके अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। वे विकसित भारत फाउंडेशन के प्रमुख रहे। उन्होंने असंगठित ग्रामीण भारत के दुग्ध उत्पादकों को जहां आर्थिक मजबूती दी और सम्मान दिलाया, वहीं पूरे विश्व को एक दिशा दिखाई।
राइट, बिसाइड्स न्यूमरस नेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, इंटरनेशनल अवार्ड्स वाज आल्सो अवार्डेड टू हिम, व्हिच इंक्लूड द वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1989।
जी हाँ, और अब हम याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज जयंती। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक शिक्षाविद यशपाल को। देश में वैज्ञानिक प्रतिभाओं को निखारने में उनका खास योगदान माना जाता है। उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। यशपाल दूरदर्शन पर टर्निंग प्वाइंट नाम के एक साइंटिफिक कार्यक्रम को भी होस्ट किया करते थे। भारत में उनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। वो शिक्षा में ओवरबर्डन पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे की ओर भारत सरकार का कई बार ध्यान भी आकर्षित किया।
Right, and the next personality we pay tribute to today is Munawar Rana, who is having his birth anniversary today, who was an Indian Urdu poet and political influencer. He was honored with the Sahitya Akademi Award in 2014 for his poem Shah Daba.
जी हाँ, और अब हम याद कर लेते हैं भारतीय सिनेमा जगत में एक जाना पहचाना नाम वी के मूर्ति को। जी हाँ, वेंकटराम पंडित कृष्ण मूर्ति को। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर हैं। एक कैमरामैन के रूप में वी के मूर्ति ने बहुत नाम कमाया है और उनके कैमरे का जादू, मुस्कुराते होठों की उदासी, आंखों के काले घेरों की स्याह नमी, गुलाबी सर्दियों की गुनगुनाती गर्माहट और किताबों में छिपी चिट्ठियों से उठती प्रेम की खुशबू आदि सब कुछ कैद कर सकता है। तो उनकी जिस फिल्म में उन्होंने अपना काम किया है, उनकी फिल्म का एक गाना सुना जाए।
जरूर।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
लेके पहला पहला प्यार।
Yes, Murthy, a one-time violinist and a jailed freedom fighter, was Guru Dutt's regular cameraman on his movies. He provided some of India's cinema's most notable images in a starkly contrasted black and white. He also shot India's first CinemaScope film, Kagaz Ke Phool. And for his contribution to film industry, particularly the Indian film industry, he was awarded the IFA Lifetime Achievement Award in 2005. And in 2010, he was honored with the Dada Saheb Phalke Award for his contributions to Indian cinema.
बिल्कुल, जैसे आपने कागज के फूल की बात की है तो क्यों ना कागज के फूल का एक गाना सुना जाए।
क्या हसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वक्त ने किया।
In fact, in 1959, it was Guru Dutt's Kagaz Ke Phool, which was a film critically acclaimed, and it was one of the director's best. And more than anything else, it won many accolades for its cinematography and created unparalleled history in the field. He repeated the feat with Sahab Bibi aur Gulam, winning the award again in 1962.
याए सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पियाए सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे हर आहट पे समझे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया है सो जिया।
और अनुजा गुरुदत्त की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में वीके मूर्ति ने लाइट और कैमरे के से चमत्कार उत्पन्न करके दर्शकों का मन मोह लिया था, तो क्यों ना उनकी फिल्म प्यासा में जो उन्होंने काम किया है उसका गाना सुना जाए।
मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से।
और एक और फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया जाल, उसका भी गाना सुन लेते हैं।
चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आके बिना बात किए जाना है बुरा। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आके बिना बात किए जाना है बुरा।
और प्रसिद्ध लेखक, कवि, भाषाविद और संपादक नाथूराम प्रेमी की आज जयंती है। वे अपनी रचनाएं प्रेमी उपनाम से लिखा करते थे। नाथूराम जी ने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने मौलिक ग्रंथों के प्रकाशन के साथ साथ भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से बांग्ला के मूर्धन इतिहास साहित्यकारों की रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित करके हिन्दी के भंडार को भरने का सराहनीय कार्य किया था। और भारतीय इतिहासकार तपन राय चौधरी की भी आज पुण्यतिथि है। तपन राय चौधरी ब्रिटिश भारतीय इतिहास, भारतीय आर्थिक इतिहास और बंगाल के इतिहास के विशेषज्ञ थे। वो वर्ष 1993 में ऑक्सफोर्ड से सेवानिवृत्त हुए। तपन राय चौधरी ने सन 2007 में भारत सरकार द्वारा उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर उनकी पुस्तकों की बात करें अनुजा, तो बंगाल अंडर अकबर एंड जहांगीर, जैन कंपनी इन कोरोमंडल पुस्तकें खास रही हैं। इसके अलावा उनकी जो अन्य किताबें रही हैं उनमें बंगाल नामा जो 2007 में प्रकाशित हुई थी, और अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1932 में वातमूल पुरस्कार भी उनको दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर ऑफ लेटर्स, डॉक्टर ऑफ लेटर्स कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जो है मानद उपाधि, और डॉक्टर ऑफ लेटर्स वर्धमान विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था।
एंड ऑल्सो ही रिसीव्ड द पद्म भूषण इन द ईयर 2007। And of course, we also salute and do remember Vijay Salaskar, whom we did mention about, who who was a martyr for the 26/11 attack in the year 2008, which we mentioned in the beginning. And he was a senior police inspector and an encounter specialist who lost his life in the line of duty on this day in the year 2008. It is because of these heroes that we feel safe in our country, and we salute to all these martyrs.
Bilkul. और इसी के साथ आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का समय आ गया है. तो मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर. साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं.
नमस्कार.